एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर,
तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।
साधना में पीले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर अपने अंदर, तो पार कर ले मुश्किल का समंदर। एक है साधन, दूसरा है साधना, और तीसरा है साध्य। जो पाना है, जो साधना है, जो सद जाए, वह लक्ष्य, उस तक पहुंचना जो टूल है, संसाधन है, जिसका प्रयोग कर पहुंचना है, वो है साधन। और जो क्रिया है, जो विधि है, जो मेथडोलॉजी है, जिससे पाना है, वो है साधना। साधना, साधन और साध्य। साधन ज्ञान है, साधन योग है, साधन सेवा है, इन साधनों के आधार पर साधना, साधना तपस्या है। और इन दोनों को लेकर जो साध्य है वहां तक पहुंचना है, मेहनत है सुबह की साकार मुरली, मेहनत है बिना मेहनत के इस ऊंची मंजिल पर पहुंचा नहीं जा सकता। साध्य तक पहुंचने के लिए जो साधन है और जो साधनाएं हैं उनमें एक साधन है श्रवण, सुनना। सुनना दो तरीके से होता है, एक मस्तिष्क से सुनना और दूसरा हृदय से सुनना। मस्तिष्क से व्यक्ति सुनता ही नहीं है, सुनना वास्तव में हमेशा हृदय से ही होता है। मस्तिष्क से सुनना अर्थात व्यक्ति दूसरों को नहीं स्वयं को ही सुन रहा है, स्वयं के ही कोलाहल को सुन रहा है। हृदय से सुनना अर्थात प्रेम से सुनना, जब प्रेम के द्वार खुल जाते हैं और हृदय हृदय से जुड़ते हैं तब सुनना सहज हो जाता है और वो ही वास्तविक सुनना है। अन्यथा जो केवल मस्तिष्क से सुन रहे हैं, वो जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो समझ दी जा रही है, उसे वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने ही भीतर के कोलाहल को सुन रहे हैं, अपने ही भीतर की आवाजों को सुन रहे हैं। श्रवण, सम्यक श्रवण, श्रावक वो जो हृदय से सुने। और वास्तविक सुनना है मौन से सुनना, और वास्तविक सुनना है आंतरिक मौन, वॉचफुल साइलेंस, आंतरिक मौन हो जाए तब जो कुछ सुना जाता है वो सीधा अंदर प्रवेश करता है और समा जाता है और परिवर्तन आता है। और यदि केवल ऊपर ऊपर से सुनना है और भीतर का कोलाहल अब भी जारी है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है और मन में केवल और केवल प्रश्न रह जाते हैं। और वास्तविक सुनना जो है उसमें जरूरी नहीं है कि जो हमें पता नहीं वो सब कुछ सुनाया जा रहा है, परंतु फिर भी हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। सुनाने वाला, सुनाने वाले जो सुना रहे हैं केवल उनके शब्दों में हमें अपने उत्तर नहीं, परंतु उनके मौन में हमें अपने उत्तर मिलेंगे। दो वाक्यों के बीच में जो अंतराल है उस अंतराल में प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसीलिए श्रवण, हियरिंग बहुत बड़ा टूल है इस प्राणी की यात्रा में। सुनना कैसे? सुनना हृदय से सुनना। कैसे सुनना? मौन में सुनना। कैसे सुनना? इनर स्टिलनेस में सुनना, आंतरिक वॉचफुलनेस के साथ सुनना। इसी को सुनना कहा जा सकता है। बाइबल में कई जगह पर जीसस कहते हुए सुनाई दिया है कि जिसे कान है वो सुनो, जिसे आंख है वो देखो। क्या वो जिनके सामने खड़ा था उनके पास आंखें नहीं थी? क्या जिनको वो सुना रहा था उनके पास कान नहीं थे? फिर भी वो कहता है, बाइबल में स्टेटमेंट है बहुत सारे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स नंबर 9 से 16 तक, Whosoever has ears, let them hear. The disciples came to him and asked, Why do you speak to people in parables? तुम लोगों के सामने कहानियों में क्यों बात करते हो? He replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, not to them. क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है उसका जो रहस्य है वो तुम्हें बताया गया है उन्हें नहीं उन्हें अर्थात लोग और तुम अर्थात जो उसके शिष्य थे वो Whosoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have even what they have will be taken away. This is why I speak to them in parables. Though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand. For the people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts and turn. And I would heal them. But blessed are those ears because they see. Blessed are the eyes they see. Blessed are the ears they hear. Duniya ke log sun rahe par nahi sun rahe. Dekh rahe parantu nahi dekh rahe. धन्य है वो आंखें जो देख सकती है धन्य है वो कान जो सुन सकते हैं तो सुनना श्रवण श्रावक बनना सम्यक श्रावक बनना साधना है ज्ञान विराट है सारा ही ज्ञान बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है ज्ञान को समझने के लिए हृदय के द्वार खुलने चाहिए तभी वो ज्ञान अंदर प्रवेश करेगा और परिवर्तन आएगा और एक चीज सुनते समय अनुग्रहित होकर सुनना धन्यवाद के भाव से सुनना ग्रैटिट्यूड से सुनना तब ज्ञान भीतर प्रवेश करेगा तो साधन साधना साध्य ये जीवन बन जाए तपस्या समय अवधि से संबंधित नहीं है तपस्या जीवन शैली बन जाए जीवन का अभिन्न अंग बन जाए वास्तविक संपत्ति वही है जो देने से बढ़ती है इसके अतिरिक्त जो भी संपत्ति है वो संपत्ति है ही नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं इसलिए जो भी ज्ञान हमारे पास है उसे क्या करते रहना है बांटते रहना है बांटने से क्या होगा वो बढ़ेगा बांटने से क्या होगा उस ज्ञान के प्रति स्पष्टता बढ़ेगी ज्ञान से क्या होगा उस ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी क्लैरिटी तो प्राणी की यात्रा के 80 दिन पूरे हुए लंबी यात्रा है इन 80 दिनों में अनेक अनेक विषयों पर चर्चा हुई और प्रश्न बहुत सारे हैं पर जैसे कहा सम्यक श्रवण जब नहीं होता है तब ढेर सारे प्रश्न आते हैं अन्यथा ये यात्रा ऐसी है कि जो इसको करेगा उसी को अनुभव होगा जो केवल सुनेगा और कहेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है उसे कोई अनुभव नहीं होगा क्योंकि हम प्रवेश कर रहे एक अज्ञात क्षेत्र में टेरा इनकॉग्निटो जिसमें क्या होने वाला है कुछ पता नहीं पर जो कुछ होने वाला है वो अद्भुत होगा वो नया होगा प्राणी की यात्रा अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस की यात्रा है चेतना का जागरण और नाम अभी इसे शायद हमने या लोगों ने दिया है प्राणिक यात्रा पर कई लोग इस यात्रा में बचपन से हैं और उन्हें ही पता नहीं इसे ये कहा जाता है जो कैटेगरीज की चर्चा की गई शायद कई लोग उस कैटेगरीज में बहुत हायर है ऊंचे पद पर है पर उन्हें अब शायद पता चला कि ये वो कैटेगरीज है और ऐसा संसार में कोई भी नहीं है कि ये प्राणिक जीवन हमारा वास्तविक जीवन है, हमारा नेचर है, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्रता के साथ जुड़े हुए हैं। प्राणी की यात्रा पवित्रता की यात्रा है, प्राणी की यात्रा आत्मा के आरोहण की यात्रा है, प्राणी की यात्रा शरीर से डिटैच्ड होने की यात्रा है। सुबह की साकार मुरली, डिटैच्ड, अशरीरीपन का अनुभव करने की यात्रा है। इसलिए जो जो शरीर और आत्मा के बीच है उसको हटाना होगा, उसको हल्का करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो जो भारी करता है। प्राणी की यात्रा थर्ड आई एक्टिवेशन है, तीसरा नेत्र खोलने की यात्रा है। प्राणी की यात्रा लाइट बॉडी एक्टिवेशन की यात्रा है। प्राणी की यात्रा आत्मा के अनुभव अनुभूति की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा में नए नए रहस्य प्रकट होंगे, सृष्टि के रहस्य प्रकट होंगे, ज्ञान के रहस्य प्रकट होंगे, अपने जीवन के रहस्य प्रकट होंगे, परंतु आंखें खोलकर रखनी है, कान खोल के रखने हैं। और सुनना कैसे है? मौन में सुनना कैसे है? दत्त चित्त होकर सुनना ही बन जाए चेतना। अंदर के जो विचार है, अंदर के कोलाहल है, उसे शांत कर दो थोड़ी देर। वॉचफुल स्टिलनेस, वॉचफुल अवेयरनेस के साथ, एक सजगता के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ, क्योंकि ये यात्रा लंबी यात्रा है। इसमें फिजिकल डिटॉक्स होगा, इमोशनल डिटॉक्स होगा, मेंटल डिटॉक्स होगा, स्पिरिचुअल डिटॉक्स होगा। जो सबकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है वो सब बाहर निकलेगा और बहुत डिस्टर्बेंस होगा बीच बीच में। जो वास्तव में इस यात्रा पर है वो अनुभव करेंगे, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। करने गए थे कुछ और, पर हो कुछ और रहा है, ये हो क्या रहा है? घृणा जो भीतर बैठी है वो बाहर निकलेगी। हमने उसके साथ कुछ किया नहीं, परंतु पता चलेगा उसका अस्तित्व कि घृणा थी, वो बाहर निकलेगी। इमोशनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, और सबसे बड़ा है स्पिरिचुअल डिटॉक्स। उभरेगी, बाहर निकलेगा सब। पर निकलेगा किस लिए? सरफेस पर, सतह पर क्यों आएंगे ये सब विकार? अभी छिपे हुए भीतर, क्योंकि हलचल की है, हलचल में ये बाहर आएंगे अंतिम सलामी देने के लिए। निकलेंगे घृणा, काम विकार। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, हम तो काम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, टूल्स हमारे दूसरे हैं, परंतु ये विकार नीचे जो दबे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, इमोशंस। इसलिए हो सकता है बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो, बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आ जाए मन में, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, छोड़ो इसको, कुछ और करते, पहला ही ठीक था सब। परंतु निर्जरा, निर्जरा अर्थात समूल नाश, धीरे धीरे वो निकलेंगे और खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे और नष्ट हो जाएंगे। अभी वो निकलते हैं, आते हैं, हमें धक्का देते और भाग जाते हैं नीचे, वापस छिप जाते, इससे पहले कि हम उसके साथ कुछ करें, वो कहा है ही नहीं। अंतर मन से, सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आते हैं, धक्का लगा के भाग जाते हैं, हमको गिरा देते हैं, हम देखते किसने गिराया, कहां गया वो काम, कहां है वो वासना, उसका मैं सामना करूंगा, पर वो है ही नहीं, क्योंकि वो जाके छिप गई वापस सबकॉन्शियस माइंड में, अंधेरी कोठरी में, और वहां हम प्रवेश कर नहीं पाते क्योंकि दूसरे काम इतने सारे, अमृत वेला है, मुरली है, चिंतन है, सेवा है, शरीर की बीमारी है, वो छिप गया वहां जाके, फिर हम उसको भूल जाते हैं, अपने रास्ते से चलने लगते, फिर आता है धक्का देके चला जाता है, फिर हम ढूंढते हैं वो कहां गया, क्योंकि वो बहुत गहरा है, बहुत डीप बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की विधि है प्राणिक लिविंग। तो धीरे धीरे भीतर प्रवेश, अंतर मन में प्रवेश, जहां कोई समान पहुंच नहीं पाता। समान कॉन्शियस माइंड पे डोलते रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं महान आत्मा हूं। हाँ, अगर कोई समान उस तक चला जाए, कल हमने कहा था कि पहले गड्ढा खोदना होगा, फिर बीज डालना होगा, फिर वापस मिट्टी डालनी पड़ेगी और फिर पानी डालना पड़ेगा उसमें रोज। अगर एक समान सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो एक समान ही काफी है संपूर्ण बनाने के लिए, इतने समानों की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही समान। और इतनी आत्माओं की भी आवश्यकता नहीं, एक ही आत्मा विश्व परिवर्तन कर सकती है अगर एक समान इतना गहरा चला जाए। ओनली वन सोल इज इनफ टू एनलाइटन द वर्ल्ड। तो प्राणिक यात्रा अभी चालू है, 80 दिन पूरे हुए, तीसरा चरण चालू है और प्रश्न उत्तरों के श्रृंखला की आज का 14वां दिन स्टार्ट।
ओम शांति। प्रश्नों की कड़ी में आज का जो क्वेश्चन है ये काम विकार से संबंधित है। जो बताया कि सुमान ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते, तो उसी तरह से किसी ने ये प्रश्न पूछा है, बाबा का 20 साल पुराना बच्चा हूँ लेकिन मुझे काम विकार बहुत तंग करता है। पहले युगल की शरीर के प्रति इच्छा थी लेकिन जब से वो टीचर बनी है वो विकारों से दूर हो गई है। अब हमने संपूर्ण पवित्र रहने की कसम खा ली है लेकिन काम विकार बहुत तंग करता है, इससे कैसे छूटें?
सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी स्टेप है। व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी साधना है और एक दिन की नहीं, लंबे समय की साधना है। ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स आगे की जो भट्टी होगी वो इस पर होगी, BTC, ये ट्रेनिंग है। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं, इतना काफी नहीं है। पवित्रता सुबह की साकार मुरली, केवल दो ही है जो पवित्र बनाते हैं, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा बाप। इन सन्यासियों ने भारत को थमा के रखा और दूसरा है बाप। उनकी है निवृत्ति मार्ग की पवित्रता, ये है गृहस्थ मार्ग की पवित्रता। पर पवित्रता तो पवित्रता है और प्यूरिटी की आधारशिला ब्रह्मचर्य है। प्यूरिटी की जो इमारत है, बिल्डिंग है, उसकी आधारशिला क्या है? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य केवल काम विकार नहीं, काम विकार से संबंधित को ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता। संपूर्ण ऊर्जा का संरक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य, ऊर्जा कहीं भी नष्ट ना हो अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसा आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्मी स्थिति में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्मांड में परम धाम की आत्मा की जो अवस्था है वो ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य, संपूर्ण विकारों से मुक्ति अर्थात ब्रह्मचर्य, काम विकार तंग ना करे परेशान ना करे अर्थात ब्रह्मचर्य, विकारों से परे निकल जाना अर्थात ब्रह्मचर्य, विकारों का लेश मात्र ना रहे अर्थात ब्रह्मचर्य। और ये जो साधना है ये एक स्त्री के शरीर से मुक्ति या दूसरे किसी पुरुष के शरीर से मुक्ति की साधना नहीं है, किसी एक शरीर से मुक्ति की नहीं, सकल शरीरों से मुक्ति की साधना है। किसी एक स्त्री से मुक्ति की नहीं, सभी स्त्रियों से मुक्ति की साधना है। किसी एक पुरुष से मुक्ति की साधना है, सभी पुरुषों से मुक्ति की साधना है। वुमन आई डोंट नीड यू, मैन आई डोंट नीड यू, मुझे किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं। इस अवस्था के लिए केवल और केवल तार्किक ज्ञान काफी नहीं है। सुबह की साकार मुरली बिना योग के जो विकर्म है ये तो भस्म हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। परंतु मदद करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साधन है ये प्राणिक यात्रा, क्योंकि विकारों की जो रचना होती है, विकारों का जो संवर्धन होता है वो उससे होता है जो हम खाते हैं। यदि उसमें राजसिक तत्व ज्यादा है, तामसिक तत्व ज्यादा है, तो विकार उत्पन्न होंगे। और इस यात्रा करते करते इन 80 दिनों में हम यहां तक पहुंचे हैं। अब जो हमारा पशु का स्वभाव है उसको जब तक हम नहीं छोड़ते ये विकार छूटेंगे नहीं। गाय जैसा चबाना, कुत्ते जैसा काटना और शेर जैसा फाड़ना, चिविंग, बाइटिंग, रिपिंग, ये एनिमल साइड है हमारी। इसके लिए धीरे धीरे सॉलिड फूड वायलेंस से भरा हुआ है, हिंसा है उसमें, चबाने में, फाड़ने में, काटने में। इस एक साइड को चेंज कर दो, ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। सॉलिड से यात्रा चालू करो लिक्विड की, लिक्विड जीवन हो जाए, लिक्विड लाइफस्टाइल हो जाए। धीरे 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 डाइजेशन से का जो की जो मेहनत है वो कम हो जाए और शरीर एब्जॉर्प्शन में आ जाए। डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर और एब्जॉर्प्शन के शरीर से चार्जिंग का शरीर, लेवल 4। पर वो इस भट्टी का लक्ष्य नहीं है लेवल 4, पर इस भट्टी का लक्ष्य है कि एटलीस्ट जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लेवल 3 तक तो पहुंच ही जाए। लेवल 3 अर्थात अधिकतर लिक्विड्स ही लेते हैं, कभी कभी सॉलिड फूड लेते हैं, हफ्ते में एक बार सॉलिड, बाकी 6 दिन लिक्विड्स। ये सबसे बड़ा काम है जो करना है। उपवास करके देख लिए, रॉ फूड लेके देख लिया, फ्रूट लेके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। शरीर बीमारियों से तो मुक्त हो गया पर मन बीमारियों से मुक्त नहीं हुआ है, और हुआ भी तो थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए हो जाए। उसके लिए यात्रा कैसी चाहिए? ऐसी यात्रा चाहिए जो लंबा समय चल सके, जिससे वजन ना गिर जाए शरीर का, क्योंकि वजन गिरते ही विकारों से तो मुक्ति हो गई पर दिखने में कैसे लग रहे, पतले दुबले, दुनिया दुश्मन, वापस कुक्ड फूड चालू, वापस सॉलिड फूड चालू, वापस वजन आ गया, वापस वजन के साथ विकार भी आ गए। सब कुछ जुड़ा हुआ है। दुनिया वाले खुश हो गए, हाँ अब तुम लाइन पर आ गए, अब ठीक हो, पर बाहर तो ठीक है पर अंदर बीमारियां, शरीर की बीमारियां आ गई, दवाइयां आ गई और मन में विकार आ गए, और एक तरफ थे पतले दुबले, एकदम ही हड्डी, सन्यासी हटियोगी दिखने जैसे, कैंसर का पेशेंट, टीबी का पेशेंट, पर निर्विकारिता, शरीर में कोई बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम लाइटनेस, निरंतर फरिश्ते का अनुभव। पर दुनिया दुश्मन, घर वाले दुश्मन, पति दुश्मन, पत्नी दुश्मन, परिवार वाले दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन, 4P। पति पत्नी परिवार पड़ोसी, ये क्या कर दिया तुमने? इसलिए ना तो उधर और ना तो इधर, हमारा मार्ग है बीच का, ताकि स्थिर रह सके, दीर्घकालीन चल सके, सस्टेनेबल हो सके ये जर्नी, ये यात्रा। तो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले चेंज द हैबिट्स, फूड हैबिट्स, बाकी सब कर लिया वो चालू रखो, समान का अभ्यास चालू रखो, ब्रह्मचर्य की लिटरेचर पढ़ो, साहित्य पढ़ो, सब कुछ करो। ब्रह्मचर्य से संबंधित जितनी क्लासेस है वो सभी क्लासेस सुनो, ब्रह्मचर्य से संबंधित जितनी किताबें हैं वो सभी किताबें सुनो पढ़ो, बहुत सी किताब है। एक दादा भगवान है उनकी किताब है ब्रह्मचर्य पर, एक दूसरा स्वामी शिवानंद की किताब है ब्रह्मचर्य पर, दो स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी, तीन स्वामी शिवानंद महाराष्ट्र वरुड़ उनकी एक किताब है ब्रह्मचर्य पर, तीसरा स्वामी शिवानंद, ये अलग अलग शिवानंद है उत्तर प्रदेश, उनकी किताब है ब्रह्मचर्य पर, अगला एस्कॉन की किताब है, स्वामी प्रभुपाद की जो किताब है ब्रह्मचर्य की, वो सबसे पावरफुल है और खास वो उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचारी है, वो जो किताब है इतनी शक्तिशाली किताब है। किसके लिए है? जो लंबे समय से ब्रह्मचर्य में चल रहे, वो गृहस्थियों के लिए नहीं है, जो ब्रह्मचारी है 30 साल से 40 साल से उनकी संस्था में जो ब्रह्मचारी है उनका कैसा पतन हुआ और कैसे उसको रोका जाए कि आप कपड़े पहनना है कितना, सब कुछ उसका वर्णन है। तो ब्रह्मचर्य संबंधित सारी किताबें पढ़ो, उसके बाद में इसी यज्ञ में जगदीश भाई की लिखी हुई किताब है ब्रह्मचर्य पर। दूसरा संपूर्ण पवित्रता नाम की एक दूसरी किताब है जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है, परंतु उसमें ब्रह्मचर्य की चर्चा नहीं है, पवित्रता की चर्चा है। हमें चर्चा चाहिए ब्रह्मचर्य की आर पार, जब तक वो चर्चा नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। कई सारे ग्रुप्स बने हैं, टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा ग्रुप बना है ब्रह्मचर्य का, कई हजारों युवक कुमार उसमें जुड़े हुए, केवल कुमार उसमें चर्चा करते रहते। कई सारी ब्रह्मचारी कमिटीज है, हर संडे वो लोग मिलते हैं, उनको ब्रह्मा कुमारी इसका कुछ भी पता नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं, श्री राम हनुमान जी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और फिर चर्चा को चालू करते हैं, जिसमें सारे कुमार बैठते हैं और चर्चा चलती है। हाँ तुम बताओ आज कैसी रही रात, आज कैसे रहे स्वप्न, आपस में चर्चा करते हैं और बहुत गहरी गहरी बातों की चर्चा करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। ब्रह्मचर्य कम्युनिटी नाम का एक ग्रुप है कुमारों का, कुमार है वो, कोई आईटी में जॉब करता है, सारे लोग संसार के लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को बहुत मानते हैं, ऐसो का भी ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, उनकी बातें सुनो, उनकी चर्चा सुनो। वो कोई भाषण देने वाला नहीं है, कोई वक्ता नहीं है, पर उनकी जो बातें होती है इतनी गहरी और इतनी प्रासंगिक होती है और इतनी प्रैक्टिकल होती है कि भाषण, बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी किताबों से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है वो बातें, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन की बातें होती है वो सारी। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसी किताबें, ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर पढ़ो तो कहीं ब्रह्मचर्य दृढ़ होगा। ब्रह्मचर्य केवल जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षण है उसके साथ बैठ के चर्चा करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बुद्धि से समझ गई है, युगल जो है वो टीचर बन चुकी है, वो शरीर से पार निकल गई है, परंतु यहां प्रश्न पुरानी यादों का है। बुद्धि से समझ गई है कि ज्ञान कहता है ये करो वो करो, बुद्धि ने तो स्वीकार कर लिया है, परंतु शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं, शरीर के संस्कार है, शरीर में व्यसन है विकार का, वो उत्तेजनाएं तो शरीर में हो रही है, मन उसके सामने दुर्बल हो जाता है, मन घुटने टेक देता है शरीर के सामने, समर्पित हो जाता है, अब मैं क्या करूं, मुझे पता है श्रीमत, द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक, जीसस क्राइस्ट कहता है आत्मा तो तैयार बैठी है परंतु शरीर कमजोर है, द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक, ये जो फ्लैश है, ये जो चमड़ी है, ये जो मांस है, ये लोथड़ा जो है शरीर, इसमें जन जन की वासनाएं एक एक इंद्रिय में छिपी है, इसलिए प्राणी की यात्रा जो है इसका जो सबसे गहरा संस्कार है बस दो ही है, बस उन्हीं पर काम कर रहे हैं, फूड फ्रीडम एंड सेक्स फ्रीडम, ये दो ही पुरुषार्थ है बस, इसके अतिरिक्त तो कोई तीसरा पुरुषार्थ ही नहीं है। इसके परिणाम में समान सब कुछ, जो मुरली में सब कुछ अपने आप आ जाएगा, सब कुछ, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि ये करने की ये सारी विधियां ऑलरेडी सब कुछ मुरलियों में है, पर जिसके पास आंख है वो देखे, जिसके पास कान है वो सुने। हम देख ही नहीं पाए कि ये तो भगवान ने कब का कह रखा है, एक एक बात कह के रखी है, पर शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे जैसे जैसे इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य के लिए सॉलिड फूड को हटाओ और लिक्विड को लाओ। सॉलिड फूड के आगे घुटने नहीं टेक देना, चबाते ही विकार जागते हैं। धीरे 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 लिक्विड होने या चबाने का संबंध नहीं है, क्या हो रही है अंदर जाके उसका संबंध नहीं है, संस्कार का संबंध है। इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं, पुराने इसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहला टूल लिक्विड और बाकी जो बातें बताई ब्रह्मचर्य संबंधित उसके बारे में पढ़ते रहो। मनसा ब्रह्मचर्य धारण करो, वाचा और कर्मणा अपने आप आ जाएगा। कौन सा व्रत लेना है? मनसा ब्रह्मचर्य का। मन से भी खंडन ना हो, मन से भी खंडन ना हो तो अपने आप सब कुछ ठीक होते जाएगा। और ब्रदारियन सबसे बड़ा टूल है इसमें, ये रादर इस यात्रा में ब्रह्मचर्य गिफ्ट के रूप में अवतरित होगा, एक सौगात मिलेगी। जिस ब्रह्मचर्य के लिए 40 साल और 50 साल से झगड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो अवतरित होगा लेवल 3। थोड़ा भी लेवल 3 तक पहुंच गए तो आ जाएगा, लेवल 2 में ही आ जाता है वो, लेवल 3 में आएगा और लेवल 4 में उससे भी आगे निकलेंगे। फिर सारे विकार एकदम स्क्रीन हो जाएंगे। जो चीज हमें आकर्षित करती थी अब वो आकर्षित ही नहीं करेगी, रखी हुई है सारी चीजें परंतु कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। जो पहले हमारी कमजोरी थी अब वो आकर्षित नहीं करती। नेक्स्ट।
तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रह्मचर्य का।
ब्रह्मचर्य इतना बड़ा टॉपिक है उसके लिए तो दिन रात भी चर्चा करो तो भी कम है, फिर भी वो अपूर्ण ही रह जाएगा, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है। इससे बड़ा कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है पवित्रता, द ग्रेटेस्ट एंड द हाईएस्ट। और बाबा ने तो कहा है कि मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूं, पर यही प्रॉब्लम है क्योंकि सार सुनाया ना सार सुनाया तो हमने भी सार को पकड़ा बस और वहीं टिक गए, परंतु सार को सुनाया अर्थात उसके विस्तार, उसको विस्तार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझना। बाबा ने कहा मैंने तो ज्ञान दे दिया, अब तुम उसका विस्तार करो, तुम उसको समझो, उसकी गहराई में जाओ, मनन करो, चिंतन करो। जो ऊपर ऊपर तैरते हैं उन्हें क्या मिलती है? मछलियां। जो डीप जाएंगे उन्हें
बड़ी मोती।
ये बाबा के खुद के महावाक्य। जज करो, मैंने तो बता दिया, ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। चिंतन करो, मनन करो, उगारो। जो गाय उगारती नहीं गोया बीमार है, जो बच्चे विचार सागर मंथन करते नहीं गोया बीमार है। तो ब्रह्मचर्य तो सबसे बड़ा टॉपिक है चिंतन। एक लाइन पढ़ो और चिंतन करो, एक लाइन पढ़ो एक घंटा चिंतन, एक लाइन एक घंटा चिंतन। इतना भी अगर कोई चिंतन सुबह कर ले तो सारे दिन भर किसी भी स्त्री का और किसी भी पुरुष का शरीर उसे खींचेगा नहीं, क्योंकि चिंतन की शक्ति शरीर के आकर्षण से बड़ी है।
आज के महावाक्य है ना, तुम्हें तुम्हारी नजर
जिस्म पर पड़ती है, ऐसा मुरली में एक जगह लिखा है कि वो लोग जो है टीचर प्रोफेसर उनकी नजर कहाँ पड़ती है? जिस्म पर पड़ती है। उनकी नजर कहाँ पड़ती है? ये जिस्मानी स्टूडेंट्स पर पड़ती है, शास्त्रों पर पड़ती है। तुम्हारी नजर कहाँ पड़ती है? और नजर की बात इन आंखों से नहीं है,
मन की,
माइंड। ये आंख क्या देख रही है?
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस प्राणी की यात्रा में भी ऐसी है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो हम रह जाएंगे, इसलिए इस प्राण की यात्रा को बड़ा धीरे धीरे संभल के सोच समझ के गहराई से करना है। नेक्स्ट किसी का प्रश्न है, मुरली के महावाक्य सीधे सुनने चाहिए, बीच में मिक्स नहीं करना चाहिए? आजकल मिक्स करने का फैशन हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग को समझाने से कोई देही अभिमानी नहीं बनेगा, बाबा ने जो समझाया है उसको समझाने से देही अभिमानी बनेगा, बाबा ने समझाया है उसे ना समझाकर पॉजिटिव थिंकिंग को समझाना उसका टाइम वेस्ट करना है। किसको भी ऐसा समझाओ जो वह परमात्मा के प्यार में खो जाए, किसको भी प्यार और अथॉरिटी से बाबा का सत्य ज्ञान समझाओ। ये दादी जानकी जी की क्लास से लेकर किसी ने प्रश्न किया है।
ये ज्ञान कई अवस्थाओं से गुजरा है। शुरुआत में जो ज्ञान था वो बहुत क्या कहेंगे उसको, संकुचित, और उसमें थोड़ी सी ये थी कि यही सत्य है और यही है, यही सुनाना है। शुरुआत में ये एक स्टेज थी ज्ञान की, 7 डेज कोर्स जो बाद में डेवलप हुआ वगैरह वगैरह। तो ये बाबा के महावाक्य और यही सत्य है, ये बाबा के महावाक्य, इसे ऐसा ही सुनाना है। और ये वो पीरियड था तब सबसे ज्यादा विरोध हुआ। सबसे ज्यादा विरोध कब हुआ? शुरुआत में। फिर धीरे धीरे 80s में विरोध थोड़ा कम हुआ। फिर ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है ये थोड़ा सा इसने अपनी करवट बदली है, सुनाने का ढंग बदला है 80s से। फिर वो कोर्स आया, फिर भाषण करने लगे, फिर रेडियो पर बुलाने लगे। फिर वहां पर वो क्या कहते थे कि केवल दिव्य गुणों के बारे में बताओ, ब्रह्मा कुमारी इसका कुछ नहीं सुनाना। तो यहाँ फिर ज्ञान सुनाने का तरीका धीरे 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 बदलता गया। फिर और आगे बढ़े, फिर वहां मेगा प्रोग्राम्स चालू हुए, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने चालू हुए, फिर बाहर बाहर कंपनियों में बुलाना चालू किया गया। फिर यहाँ पर, यहाँ ब्रह्मचर्य की, प्योरिटी की चर्चाएं बहुत थी, भोजन की चर्चाएं थी कि पवित्र भोजन, पवित्र सन, यहाँ वो कम कम होने लगा थोड़ा। हाँ, बाहर के लिए, अंदर जो आने लगे, जो ब्राह्मण बन गए उनके लिए तो धारणाएं थी और जो अब भी है, पर धीरे 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 विस्तार इतना हुआ है कि फिर हम लोगों ने कौन से टूल लिए, पॉजिटिव थिंकिंग टूल, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, लीडरशिप कैसे हो जाए,
ये सब,
महिला सशक्तिकरण, क्योंकि वहां पर विंग्स बने, फिर 18 विंग्स 20 21 विंग्स, ये सारे विंग्स बने। अब उस विंग्स में जो लोग आने लगे उन्हें ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है। मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, उनको इस ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं, वो तो अपनी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे, परंतु ये सब हमारे टूल्स है उस ज्ञान तक पहुंचाने के लिए। इसलिए वर्तमान के जो लोग है वो डायरेक्ट अध्यात्म का ज्ञान नहीं सुनना चाहते। स्टूडेंट आता है, उसको क्या करना है, उसका लक्ष्य इंटरव्यू में पास होना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ानी है, सिखाओ। अगर हम उसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने लगे तो भाग जाएगा वो। इसके लिए ज्ञान युक्ति युक्त है। इसलिए वर्तमान में जो पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्सेस होते हैं ये इनडायरेक्ट मेथड है उसी ज्ञान तक पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट 7 डेज का कोर्स सबको नहीं कराया जा सकता है, इसलिए ये अलग 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 मेथड्स हैं। हाँ, जो भी दादियों ने कहा है, बाबा ने कहा है, मम्मा ने कहा है, वो सब भी करेक्ट है उस समय के लिए। इस ज्ञान को यही समझना है, बाबा ने कितनी सारी बातें कही है मुरलियों में जो विरोधाभासी है, अपोजिंग है, डायमेट्रिकली अपोजिट है एकदम, परंतु वो कब कही गई, उस समय उन लोगों के लिए, उस काल में, उस स्थान में, उस परिस्थितियों को देखते हुए। अभी समय बदला है, परिस्थितियां बदली है। अभी जाकर हेलीकॉप्टर में जाके पर्चियां नहीं गिराएंगे, अभी मीडिया है, एक मैसेज करो सब तक पहुंच जाता है। वो तब का, विदेशियों में, विदेश में ज्ञान देने की विधि टोटली अलग है, भारत में ज्ञान देने की विधि टोटली अलग है। पहले हम ज्ञान देते थे, शुरू करते थे आत्मा है, अभी बहने जो ज्ञान देती है जरूरी नहीं आत्मा से चालू करती है, सामने को वाले को देख कर चालू, कोई ब्रह्मा से चालू करता है, कोई सृष्टि चक्र से चालू करता है, कोई साइंटिस्ट है उसको ज्ञान देने की विधि अलग, कोई इंजीनियर है उसको ज्ञान देने की विधि अलग, कोई डॉक्टर है उसको उस रीति से ज्ञान देना पड़ेगा। सबको एक ही ढांचे में ढाल के नहीं हो सकता है काम। कोई एकदम ही अनपढ़ माता आ गई बैठ गई, उसको हम सुनाए कि ये जो 5000 ईयर्स का चक्र है ये क्यों रिपीट होता है, आई विल टेल यू, ये जो यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है, ये यूनिवर्स कैसे बना, इसमें थियोरीज है, बिग बैंग थियोरी है, वो माता ऐसे देखती रहेगी, फिर बिग बैंग थियोरी है, ये डार्विन थियोरी आई, उसको क्या लेना है डार्विन थियोरी से। हाँ, कोई भक्त आया है जो प्रभु की खोज में है, प्रभु का प्यासा है, उसको हम सीधा परमात्मा से मिलन करा देंगे। वो स्कूल कॉलेज का बच गया, उसको लीडर बनना है, उसको एग्जाम में पास करना है, पास होना है, उसको हम कहें मैं शांत स्वरूप आत्मा, अरे मुझे ये शांति नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम में पास होना है, वो मुझे सिखाओ। जिसको जो चाहिए वो देना, कैफेटेरिया अप्रोच, बफे होता है ना, सब रखा रहता है भोजन, जो चाहिए वो लो, वैसे हमें ये सिस्टम क्रिएट करनी है कि सामने वाले को देखकर उसको क्या चाहिए, इसलिए ये अलग अलग मेथड्स, पहले एक ही प्रदर्शनी थी, अभी जितने विंग्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रदर्शनी है कि नहीं, हर विंग की अपनी अपनी प्रदर्शनी है, व्यसन मुक्ति की अपनी प्रदर्शनी, 7 दिन की, ऐसा पहले था क्या? पर उस समय वो सत्य था, इस समय ये सत्य, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। आरे वाले तो बात मत पूछो, और कुछ नया निकलेगा जो अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं था। बाबा ने किसी मुरली में व्हाट्सएप या इसकी कोई चर्चा की है? तब था ही नहीं है, सोशल मीडिया का कोई यूज किया नहीं। बाबा तो भारत से ही बाहर नहीं गए, एक श्रीलंका गए थे और एक नेपाल, लंदन का टिकट बना था कैंसिल कर दिया था, गए नहीं, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी। और हम कोई कहे नहीं हम भी नहीं जाएंगे, तो बाबा तो कहते फिर विदेश की सेवा ही नहीं होती अगर कोई ऐसा कहता तो। कितने बहनों भाइयों को तो बाबा ने विदेश भेजा। तो सेम एक्सेप्ट एवरीथिंग।
तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि समाज को अगर इकट्ठा करना है तो भिन्न भिन्न तरीके तलाशने पड़ेंगे, एक तरीके से सभी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं सबकी नवज को देख, समय परिस्थितियां देख, उस अनुसार उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सबको एक गोली नहीं दी जा सकती, सबकी बीमारियां अलग अलग हैं, इसलिए सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार विश्व की सेवा करने के लिए ये तरीके अपनाने ही पड़ते हैं।
जैसे कोई माँ है, वो आलू है उसके पास, उसके 4 बेटे, 4 अलग अलग प्रकार की आलू की सब्जी बनाती है, क्योंकि किसी को सूखा आलू पसंद है, किसी को बॉइल्ड वाला पसंद है, किसी को वो रस्से वाला पसंद है, किसी को दम आलू पसंद है। और एक बेटा है उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको कहती है नहीं नहीं आज तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। तो माँ अलग अलग रेसिपीज जो होती है ना, ये ज्ञान को अलग अलग तरीके से परोसना है। ज्ञान एक ही है, ज्ञान का लक्ष्य भी एक ही है, पर परोसने की विधि भिन्न भिन्न है।
उसमें से एक विधि है प्राण की यात्रा।
ये भी वहीं तक पहुंचाएगी हमें।
नहीं, हम इसको नाम दे सकते हैं, हमें ऑलराउंडर सेवाधारी।
हाँ, बाबा भी कहते हैं ऑलराउंडर सेवाधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरफन मौला कहते हैं उसको,
हरफन मौला। रस आहार को यात्रा भोजन के रूप में ले सकते हैं क्या? तो जूस या समूदी कितने समय तक रख सकते हैं? प्लास्टिक बोतल में रखें या स्टील जार में, फ्रिज में रख सकते हैं क्या? और रस आहार लेते हुए जिम कर सकते हैं कोई?
सबसे पहले तो प्राणी की यात्रा, लिक्विडेरियन यात्रा रस आहार की यात्रा नहीं है, ये फ्रूटेरियन यात्रा नहीं है, ये रॉ फूड की यात्रा नहीं है, ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की यात्रा नहीं है। फास्टिंग अलग है, प्राणिक लिविंग अलग है, ये दोनों ही भिन्न है। तो यात्रा के समय सबसे बेस्ट है न खाना न पीना। जो खाना है जो पीना है यात्रा करने से पहले खा लो, लक्ष्य रखो अब जब मैं पहुंचूंगा 24 घंटे के बाद ट्रेन से फ्लाइट से जैसे भी उसके बाद ही खाऊंगा, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि जहां हम खाते हैं वो वातावरण हमें प्रभावित करता है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन वायलेंस है, वहां पर सब लोग चबा रहे हैं, निगेटिविटी है मन में, इट्स अ वायलेंट एटमोस्फियर। इसलिए ये जो प्राणिक रिट्रीट्स होती है जो दुनिया में होती है 7-7 दिन की, 7 दिन लोग बहुत अच्छे से करते हैं रिट्रीट, 9 दिन बहुत अच्छे से करते हैं, 21 दिन, पर जब जाने की बारी होती है ट्रैवल आता है तब प्रॉब्लम चालू होती है। क्योंकि वो रिट्रीट सेंटर जहाँ ये प्राणिक भट्टी की किसी ने विदेश में होती रहती है ऐसी भट्टियाँ, तो जब जा रहे तो एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पहुँचते ही चीज़ें दिखती है खाने की, फिर आकर्षण होता है, फिर मोह जागता है, कहता लगता है खाऊँ कुछ। और लोग ट्रैवल गाड़ी जिससे भी, तो सबसे बेस्ट है अज्ञानियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ये यात्रा भोजन का झंझट ही नहीं रहेगा। बहुत सारा कैरी, इतना तो भोजन उसका ही होता है, इतने डब्बे, इसमें चटनी, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, पर ये कर वो ही सकेंगे जिनको आदत है, और जो कहे मैं एकदम ही करूँ तो दुखी हो जाएगा बेचारा। इसलिए ये ट्रेनिंग है, ये यहाँ की मान्यताओं को बदलना है। प्रश्न पूछने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, करो उसके बाद ही पूछना। इसलिए बीच बीच में कितने सारे अभ्यास कराए वो सब इसी के लिए, ताकि प्रश्न ही खत्म हो जाए, खुद करके देखो फर्स्ट। दूसरा, ये नहीं कर सकते बहुत कठिन लग रहा है, देन नेक्स्ट इज लिक्विड्स, लिक्विड्स लेके जाओ साथ में। सबसे बेस्ट है बॉटल्स, ग्लास की बॉटल्स है, मिट्टी की बॉटल्स भी आती है, प्लास्टिक छोड़ के जितना हो सके प्लास्टिक का प्रयोग कम, डोंट ईट प्लास्टिक, डोंट ड्रिंक प्लास्टिक। प्लास्टिक खाना और प्लास्टिक पीना बंद, सरकार भी खुश होगी। प्रतिबंध है तो धीरे धीरे उनका प्रयोग कम करते जाओ। तो किसमें, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, एल्यूमिनियम, ये जो भी है किसका इसको प्रयोग करो। और रही बात कितना देर तक रख सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती, जैसे फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट जूसेस है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जितना हो सके उसको जल्दी ले लो। कोई कहते हैं अभी अभी बना अभी भी ले लो, एक दूसरा 7 मिनट के अंदर ले लो, तीसरा नहीं हो सकता आधा घंटे के अंदर ले लो, अगला 6 घंटे के अंदर ले लो, और फिर देखो उसको कैसा है। नहीं रख सकते तो फ्रिज में रखो, पर जितना हो सके नॉर्मल नेचुरल टेम्परेचर वाला हो। स्मूदी अगर चाहे, एकदम परिस्थितियाँ कैसी है उसके ऊपर है, हर प्रश्न का उत्तर परिस्थिति देख कर दिया जाएगा। ये नहीं कह सकती ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। अगर कोई हमसे पूछे ये नॉनवेज है और ये दारू का ग्लास है, क्या पीना अच्छा है बताओ, अभी ये हम कहेंगे दारू ठीक है उससे। अभी दूसरा प्रश्न, ये दारू का ग्लास है और ये जूस है, क्या अच्छा है, तो फिर हम कहेंगे ये जूस अच्छा है। अगर फिर इसके आगे और कहेंगे ये कौन सा जूस, ये दो प्रकार के जूस है, ये थोड़ा थिक वाला है, ये थिन वाला है, हम कहेंगे ये थिन वाला अच्छा है। फिर कहेंगे ये थिन वाला जूस है और ये एक दूसरा जूस है, तो कौन सा, हम कहेंगे जो डाइल्यूटेड है वो ज़्यादा अच्छा है। आगे और ये एक जूस है, ये दूसरा जूस है, ये जूस है और ये पानी है, तो हम कहेंगे फिर पानी, क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर कोई कहेंगे ये पानी है और ये कुछ भी नहीं है, अब इसमें क्या अच्छा है, तो हम कहेंगे ये वाला अच्छा है। फिर पीना है कि न पीना है, फिर न पीना सबसे बेस्ट है। हर प्रश्न का उत्तर कैसा दिया जाएगा, परिस्थिति देखकर। ये नहीं कहा जा सकता ये अच्छा है या वो अच्छा है, उस समय जो व्यक्ति वो ले रहा है उसके लिए वो अच्छा है। लोग आते हैं हमारे ओपीडी में, हम उनको नहीं कहते कि नॉनवेज छोड़ दो, वो कहते नॉनवेज लेते हैं ये करते हैं, हम कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है कुछ दिन बंद कर दो, फिर वो कुछ दिन बंद करके खुद ही उसको अच्छा लगने लगता है। अगली बार आते हैं हमने कहा कुछ महसूस हुआ, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं आप छोड़ दो। क्योंकि अगर डायरेक्ट कुछ भी कहो तो छोड़ते थोड़ी ना लोग, और ही ज्यादा पकड़ेंगे,
डॉक्टर को छोड़ देंगे, डॉक्टर को छोड़ देंगे।
ज्यादा प्रतिबंध किसी को पसंद नहीं है, ये छोड़ो वो छोड़ो ऐसा छोड़ो वैसा छोड़ो, पहले ही बार अगर बता दिया 10 रूल्स बंद आना। इसलिए कहा ये यात्रा बहुत जेंटल यात्रा है, गाड़ी सीखनी है पहले ही दिन 3-4 एक्सीडेंट करा दिए बंद, पहले ही दिन मैराथन दौड़ा दिया खत्म, तो धीरे धीरे स्टार्ट स्लो स्टार्ट नाउ।
योग से संबंधित क्वेश्चन है, आपने एक क्लास में कहा था कि हमें योग में ऐसे नहीं बोलना है कि मैं आत्मज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं, मैं मास्टर साहब शक्तिवान हूँ, हम तो योग में ऐसे ही बोलते हैं, तो योग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए योग में?
योग कोई भी किसी को कभी भी सिखा नहीं सकता, हर व्यक्ति योग
आप कैसे योग करते हैं वो भी प्रकाश डाल दीजिए।
हर व्यक्ति योग अपने अनुभव से ही सीखता है, योग कोई सिखाया नहीं जा सकता। कई लोग 10 साल पहले जो उन्होंने कमेंट्री सुनी थी, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, वही आज भी वही रिपीट किए जा रहे हैं, मंत्र की तरह रिपीट किए जा रहे हैं। योग तो अनुभूति है, योग क्या है, अवस्था का नाम है। योग का आंखें बंद आंखें खोली इससे कुछ संबंध नहीं है, वास्तविक योग तो आंखें खोल के है, और वास्तविक योग प्रतिपल है, इस मोमेंट। रियल योगी को अलग से बैठने की आवश्यकता ही नहीं, अगर देखा जाए तो 2400 घंटे योग में ही है, वो वास्तविक योग है, वो वास्तविक तपस्या है, अपने वाइब्रेशन से सहयोग देना आज का स्लोगन है। तो योग अर्थात सबसे पहला, पहले योग क्या है ये ज्यादा जानने से पहले योग क्या नहीं है ये जानना आवश्यक है। योग रिपीटिशन नहीं है, योग केवल शब्द नहीं है, योग केवल कोई समान नहीं है, योग केवल बाबा से बातें करना नहीं है, योग केवल शेयरिंग नहीं है, योग केवल लेना और देना नहीं है, योग अनुभूति है, डीप एक्सपीरियंस। वो 1 सेकेंड का हो सकता है बस, 1 सेकेंड का, पर इतना गहरा कि हम उसमें अपने आप अशरीरी हो गए, ये बोला ही नहीं हमने कि मैं आत्मा हूँ उसमें। पर हाँ, फिर भी वो अवस्था हमेशा नहीं आएगी, इसलिए ये सारी विधियाँ बनी हुई है, 4 स्टेप्स योग की, पहला ये पहला वो पहला वो। परंतु जो भी हम कर रहे हैं ये समझते रहना कि ये साधन है, साध्य कुछ और है, ये मार्ग है जो हमें वहां तक लेके जाएगा। तो धीरे 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 पहले तो इस यात्रा पर जाते ही शरीर से अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है। जैसे लिक्विडिटी शरीर में स्टैब्लिश हो जाती है, फ्लूडिटी रिजिडिटी चली जाती है सॉलिड फूड की, अपने आप वो अनुभव होता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, अपने आप बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं ये परिणाम है, आत्मा के समान परिणाम है। और फिर आत्मा याद आ गई तो आत्मा से संबंधित जो भी बातें अपने आप याद आती है। जैसे शरीर याद आते ही क्या याद आता है, शरीर की भूख प्यास मित्र संबंधी सब याद आता है। आज की साकार मुरली तुम्हारे काके मामे चाचे वो सब हटाओ, एक से सारे संबंध, एक में ही सब है, वो एक ही बाप है, उसी में सारी सारे रस एक में अनुभव हो जाए। मीरा ने कोई डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की थी क्या? तुलसीदास ने कोई लिटरेचर की क्लासेस ज्वाइन की थी? तुलसीदास से पूछा गया तुम रामायण क्यों लिखते हो? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं क्यों लिख रहा हूं रामायण, क्योंकि मुझे खुद के सुख के लिए, मुझे आनंद अनुभव होता है। योग आनंद की अवस्था है, करने की चीज नहीं, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग, हम ह्यूमन बीइंग है। योग जो है वो बी की अवस्था है, डू की अवस्था नहीं है। मैं योग करने जाता हूं, आज मेरा योग अच्छा लगा, व्हाट इज अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, हाँ कल अच्छा नहीं लगा था आज अच्छा लग गया, ये क्या है, डूइंग की अवस्था ही नहीं है योग। एक राजा एक बहुत बड़े आश्रम में प्रवेश करता है, जैन मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ी जैन मोनेस्ट्री, हजारों सन्यासी है उसमें। वो प्रमुख से मिलता है वो राजा, और कहता है राजा, प्रमुख कहता है मैं आपको अपनी आश्रम दिखाता हूं, हमारी संस्था कितनी बड़ी है आश्रम। वो दिखाता है, एक जगह लेके जाता है, तो वो आश्रम ऐसा होता है बड़ा, बीच में एक हॉल है, वो यहाँ लेके जाता है, कहता है ये हमारी रसोई है, सन्यासी लोगों के लिए यहाँ भोजन बनता है, फिर वो अलग यहाँ पे शयन कक्ष है, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं सन्यासी, यहाँ मंत्र जाप करते हैं, यहाँ ये करते हैं, यहाँ वो करते हैं। बीच बीच में राजा पूछता रहता है ये क्या है बीच का, वो जो मठाध्यक्ष होता है वो ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ, फिर वो पूछता है ये बीच वाला क्या है ये बताओ। वो कहता है नहीं यहाँ पे ना आग जलाई जाती है, यहाँ से लकड़ी काट के लाई जाती है। अरे सब माना पर अब तो और ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ती, ये क्यों नहीं बताते ये क्या है, तुम यहां करते क्या हो और इतनी बड़ी जगह है। आखिर आश्रम पूरा दिखाना पूरा हो जाता है, फिर भी वो मठाध्यक्ष बताता नहीं। राजा कहता है जब तक मुझे वो नहीं बताओगे ना ये मेरे कुछ काम का नहीं है, अब ये बताओ तुम लोग यहां करते क्या हो। फुजेन मास्टर कहता है अब कैसे बताओ, ये वो जगह है जहां हम कुछ नहीं करते, इसी का तो नाम मेडिटेशन है, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से ही तो प्रॉब्लम हुआ है। बैठना बस, कुछ न करने की अवस्था, कुछ भी करो वो सब गड़बड़ करता है, सब करना बंद करो, वो है योग। डूइंग नहीं है, बीइंग है, होना, आत्मा में स्थित हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ। हाँ ये बहुत अच्छा एक चित्र है, एडवांस योगा किसे कहा जाता है, ये लोग उठक पटक कर रहे हैं, कोई पीछे ऊपर नीचे, ये एडवांस योगा नहीं है। मुंह को ये उंगली पैर की उंगली नाक को लगा रहे हैं, एडवांस योगा किसे कहते हैं, ये है सबसे एडवांस योगा। कुछ नहीं कर रहा है व्यक्ति जिसमें शांत हो गया है, बुद्ध ब्रह्मा महावीर कैसे बैठे है शांत, ये है एडवांस। मम्मा क्या कर रही है, मम्मा कोई चिंतन कर रही है, कुछ नहीं शांत है, 2 बजे उठ के बैठ रही है, उसे कहते हैं एडवांस योगा। तो योग अपने अनुभव से सीखो, कमेंट्री लगाकर, कोई सामने बैठा है उसको देखकर, कोई कमेंट्री करा रहा है और हमारा योग अच्छा लग रहा है, हमारे योग का किसी के कमेंट्री से क्या संबंध, ये टूल्स है छोटे छोटे, इनिशियल KG1 KG2 के लिए ठीक है। बुद्ध ने देखा कि 4 लोग नाव पकड़ के चल रहे, वो कहता है ये क्या कर रहे हो, वो कहते ये नाव कितने हम इसके धन्यवाद, इस नाव का, इस नाव ने हमें नदियां पार कराया, तो अब क्या कर रहे हो, कहते उसका धन्यवाद, कैसे छोड़ दे जिसने हमें नदी को पार कराया, उस नाव को अब जमीन पर उठा के चल रहे कंधे पर, दिस इज स्टुपिडिटी। ये भी ऐसा ही है, जिसने मदद किया ले लिया, अब आगे बढ़ो, मदद किया आगे बढ़ो, और चलो अपनी कमेंट्री खुद ही निर्माण करो पहला, और सब प्रकार से प्रयोग करके देखो, आंखें बंद करके देखो, आंखें खोल कर देखो, लाइट लगा के, लाइट बंद करके, एवरी मेथड ट्राई करके देखो, और फिर उस तक पहुंचो कि तुम्हारे लिए सबसे एक्यूरेट है। एक्सपेरिमेंट करते रहो, योगा एक्सपेरिमेंट है।
लेकिन इस डूइंग की अवस्था के बवर जाल में तुम लंबे समय से फंसे हुए, तो बींग की अवस्था पहुंचने के लिए,
पहुंचने के लिए प्राणी की यात्रा,
प्राणी की यात्रा।
सॉलिडिटी को हटाओ, लिक्विडिटी की तरफ आओ, नो क्वेश्चंस। 80 दिन से चर्चा चालू है, हर दिन अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, कितने सारे टूल्स यहाँ चर्चा हो चुके हैं, और अलग अलग रीति से चर्चा की है, केवल इस रीति से नहीं, ये तो सीधा चर्चा तो अभी हो रही है डायरेक्ट। नेक्स्ट एक प्रश्न, लास्ट
शॉर्टकट ही है, उसी को थोड़ा और रिफाइन कर रहे हैं इधर बीच में,
कोई कुछ चीजें गुप्त रखनी होती है।
आपका मंथन इतना चलता कैसे है? थोड़ा हमें भी सिखा दीजिए, तो किसी का एक फरमाइश है।
आदत 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 है, कोई भी
मेहनत,
आदत हो
जाए, मेहनत मेहनत
आदत है, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स एन हैबिट, एनीथिंग कैन बिकम हैबिट, कोई भी चीज आदत बन सकती है। अगर हम रात को सोने जा रहे और हमें फोन आ जाए और कोई हमें बहुत गालियां देने लगे, मित्र संबंधी कोई भी हमारा अपना, तो रात में फिर नींद आती है, फिर क्या होता है, चल चिंतन चलते रहता है, इमरजेंसी सिचुएशन है वो, क्या हो जाता है। और फिर अगर हम कैसा कह सकते, मेरा तो चिंतन होता नहीं, ये रात भर कहां से किया चिंतन,
तो आप सब आपने सब झेला हुआ है।
झेलने की बात नहीं, परंतु धीरे 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 चिंतन चलने के लिए कुछ बातें चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो हमें व्यक्तिगत रूप में जिसने मदद की है वो है आबू के पर्वतीय वादिया, यहाँ का मौन, यहाँ का एकांत, यहाँ की पहाड़िया, यही ये नक्की ही कारण बना इस चिंतन का। नक्की के राउंड्स, हमें याद है जब पहली बार हम यहाँ आए थे और पहली बार नक्की हमें पता नहीं था कहाँ है और जा रहे थे, अंधेरा था एकदम, तो वो जो गेट है हनुमान जी वाला, वहां तो एकदम ही अंधेरा छा गया, वहां तक प्रकाश था, तो हम रुक गए, तो पीछे एक भाई थे, उसने कहा रुके क्यों, चलो बढ़ो आगे, महेश भाई जी, महेश बाबू जी, तो वो थे, तो हम डर गए थे एक्चुअली, इतना अंधेरे में कैसे जाए, उन्होंने कहा क्यों रुके, बढ़ो आगे, बस हम आगे बढ़ते गए। नहीं नहीं 2003 अभी 14-12 सेकेंड टर्न वाला। तो चिंतन धीरे 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 धीरे, एकांत, मौन, पहाड़िया, आबू, पर्वत, गुफाएं, ये सब 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 चीजें, और फिर धीरे धीरे कभी किसी किसी के साथ जाने लगे, फिर पता चला कि वो भी बंधन है, उसको हटा दिया, फिर हिम्मत आ गई ना, एक स्थान पर पहले नए स्थान पर जाते तो कोई तो चाहिए, अगले स्थान पर अगली बार किसी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अकेले जाओ तो भी ठीक है, और फिर धीरे धीरे 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा एकांत मौन, और स्पेशली संडेज सुबह जाते थे शाम तक 3 बजे 4 बजे तक, वो पूरी जो संडे की जो मुरली रहती थी, वो मुरली पूरा जिसको क्या कहेंगे, लाइन लाइन शब्द शब्द उसका, जैसे हम एक हो जाते थे उसके साथ, अशरीरी अवस्था, तो वैसी शुरुआत हुई। और एक चीज, एक अनाउंसमेंट है, ये कई सारे इस ये जो क्लासेस और ये सब है, इसका कोई ना तो फेसबुक अकाउंट है, ना तो कोई सोशल मीडिया पर, ये कहीं पर भी नहीं है। कई सारे लोग नया नया कुछ कुछ लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर खुद ही निर्माण कर रहे और खुद ही उत्तर दे रहे, और कह रहे ये ग्रुप से जा रहे हैं, नीचे हमारा नाम भी डाल रहे हैं, तो ये नए नए अकाउंट्स खोल रहे हैं, इनकी क्या मंशा है पता नहीं, परंतु बताने के लिए ये ग्रुप मधुबन से चलता है, और इसका कोई भी सोशल मीडिया पर, कोई भी कहीं कोई प्लेटफॉर्म पर हम लोग नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नहीं तो लोग ये उत्तर उत्तर दे रहे, खुद ही प्रश्न निर्माण
व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, तो सारा उल्टा, और क्लासेस का भी ऐसे एडिटिंग करके, तो दूसरा
इधर से निकालेंगे, उधर से निकालेंगे, इधर से टुकड़ा, उधर से टुकड़ा।
तो यूट्यूब चैनल बना के सारी एक बिजनेस,
ये सब बिजनेस और ये सब चलते रहता है। आज बाबा ने कहा ना, पहाड़ी है ना, फरिश्ता ऊपर रहता है, नीचे देखते रहता है, साक्षी
साक्षी
वरदान। ओम शांति,
ओम शांति।
अमृत की खान, साधना में पीले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान।
नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
जन्म ही दुत्कार है,
नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है, नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सी की हो संतान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर,
मुश्किलों का समंदर।